इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसका अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा जी ये जो इंजरी इनको अगस्त में आया था वाइल प्लेइंग द 100, अब ये ठीक हो गए हैं और वापस आ गए हैं तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान में। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में ना कंटेनर लगा देंगे अभी क्रिकेट ग्राउंड में दिखेंगे, खबरदार तुम लोगों ने चौका 800 रन यार, मतलब अन्नी चुकी हुई है, कंटेनर लाओ जी। अच्छा जी, तो ओली पॉप जो थे उनको कैप्टन किया है, बनाया गया था कि तुम भाई टेस्ट टीम को कैप्टन करो। इसके अलावा गस एटकिंसन और क्रिस वोक्स जो हैं उनको रेस्ट किया गया है सेकंड मैच के लिए मुल्तान में। ये आपने इंग्लैंड बहुत अच्छा काम किया है, हम कंटेनर लगाने का सोच रहे थे, अब एक कंटेनर का लगेगा। और पाकिस्तान जो है पिछले 11 टेस्टों से हारता चला आ रहा है, वाह क्या बात है। देखो ना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, वाह वेरी गुड वेरी नाइस, तो जो है वो बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा चलो जी, इसके अलावा जनाब जो ये जो मैचे सेकंड और थर्ड मैचे होने वाली है ना, टेस्ट मैचे पाकिस्तान की इंग्लैंड में, उसमें की प्लेयर्स बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट किया गया है। इसके ऊपर बात करते हुए माइकल वॉर ने कहा मैं बड़ा ही हैरान थे परेशान हूं कि ये इन्होंने क्यों किया। बहरहाल जी जो 16 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर ये लोग नहीं है। इसके अलावा नसीम शाह और विकेट कीपर बैटर सरफराज जो हैं वो भी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। पीसीबी ने कहा कि हमने ये चेंजेस पाकिस्तान के फ्यूचर असाइनमेंट्स को देखते हुए की हैं, जो कि 2024-25 का इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन है, हम इनको रेस्ट देना चाहते हैं। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय हसीबुल्ला, मेहरान मुमताज एंड फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान एंड अनकैप्ड कामरान गुलाम, नोमान अली, जाहिद महमूद जो कि इनिशियली टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे उनको भी रिलीज किया गया है, लेग स्पिनर अबरार अहमद जो है अनअवेलेबल है ड्यू टू डेंगी, उनको डिंगी हो गया जो है। नेशनल सिलेक्शन कमेटी मेंबर आकिब जावेद जो है उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए जो स्क्वाड को सिलेक्शन करना था बहुत ही चैलेंजिंग था हम, लेकिन जो है प्लेयर्स की फॉर्म और अर्जेंसी टू बाउंस बैक इन 2024-25 इंटरनेशनल स्केड्यूल जो है उसको हम देख रहे हैं कि इनको रेस्ट चाहिए ताकि ये बाउंस बैक करें। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये इन सब लड़कों को ड्रॉप किया गया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और जनाब जो न्यूजीलैंड की विमेंस टीम है उसने क्रश किया आज पाकिस्तान की विमेंस टीम को बाय 54 रन। ये दोनों जो है क्रिकेट में क्रश हो रहे हैं, ये व्हाट इज दिस गोइंग ऑन वे इन द कंट्री है। तो ये जो विमेंस टीम है आज अगर पाकिस्तान जीतता तो सेमीफाइनल्स के अंदर जो है वो पहुंच जाता इंडिया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या इंडिया नहीं असी जान देना कि हार जाओगे पर इंडिया नहीं असी जान देना है। वैसे जो है पाकिस्तान शुरू में बड़ा अच्छा खेल रहा था। बहरहाल जी एज अ रिजल्ट न्यूजीलैंड जो है वो पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हालांकि पाकिस्तान की तबाही कुन जो बॉलिंग थी उसमें 110 पे इन्होंने आउट कर लिया था इनको 6 विकेट्स एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि न्यूजीलैंड हैज क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स ऑफ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप सिंस 2016। इंडिया जो था वो चाहता था जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए टू रीच सेमीज, लेकिन ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान को बॉल आउट किया गया 11.3 ओवर्स में ऑन ओनली 56 पाकिस्तान ने यह स्कोर जो था करना था 110 का 11.3 ओवर्स में करना था, जो पाकिस्तान नहीं कर सका। पाकिस्तान को बॉल आउट किया न्यूजीलैंड ने 56 बॉल्स के ऊपर, जो कि उनका लोएस्ट टोटल है इन T20 वर्ल्ड कप। लेकिन जो आज जो लड़की थी वो पाकिस्तानी संधू, उसने 3 विकेट्स ली फॉर 18 रन, लेकिन ये लोग जो है मोमेंटम ही कैम नहीं रख सके। और जनाब पाकिस्तान स्कॉच स्टार्स जो हैं 3 बहनें उन्होंने भी फटे चक्के पाकिस्तान के लिए, वाह जी वाह क्या बात है। इनको जो है वो आपको पता ही है कि इनको जो है दाऊद साहब जो है यानी कि सही वाले दाऊद भाई, रजाक दाऊद फाउंडेशन, दूसरे दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम नहीं, रजाक दाऊद फाउंडेशन जो है वो इनको स्पॉन्सर करती है। तो ये जो 3 बच्चियां हैं जनाब, मैविश, सैरिश और महनूर, इन तीनों बहनों ने, ये बहनें रह सकी, इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जो है वो जीता है हंगरी जूनियर ओपन में। मैविश 15 ईयर्स की है जो खेली थी अंडर 17 में, इसने हराया हंगरी की टॉप सीड तमारा पेस्कैरिस्को को। पाकिस्तान नंबर 1 जो है वो अनडिफीटेड रही है इस अंदर जो टूर्नामेंट के अंदर। इसने जो है बुडापेस्ट में अपना 25th गोल्ड मेडल, यानी कि अब तक 25 जीते जो हैं ये बच्ची जीत चुकी है। महनूर जो कि 11 ईयर्स की है, अंडर 13 में खेलती है, इसने भी अपना मैच जो है हंगरी की क्रिस्टीना कुन को हरा के जीता, और इससे पहले इसने अपनी बहन सैरिश जो थी उसको भी हराया था, लेकिन सैरिश जो है उसने भारत जी सिल्वर जीता, उसने हराया फ्रांस की कैसी लिनको को इन अंडर 15 कैटेगरी बिकॉज शी इज 14। तो जनाब वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है जी, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और इसके बाद हम जाएंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के ऊपर।
चलिए जी, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद स्पेशल रिपोर्ट लेके आपके लिए आएंगे। आपने ऐसे हमारे साथ जुड़े रहना, हमारा नंबर 416-620-1778।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
मेटाबॉलिक इस्लामिक सेंटर की तामीर नौ को मुकम्मल करने के लिए फंड रेजिंग टेलीथॉन में हमारे साथ शामिल हों। फ्राइडे 18 अक्टूबर 3:30 बजे रेडियो साजो आवाज 770 AM और ई आवाज टीवी पर लाइव। अपने डोनेशंस के लिए स्टूडियो नंबर 416-620-1778 पर कॉल कीजिए और इस कार्य खैर में दिल खोलकर ताउन कीजिए। ट्विन इन रेडियो 770 AM एंड ई आवाज टीवी ऑन फ्राइडे 18 अक्टूबर एट 3:30 PM फॉर फंड रेजिंग टेलीथॉन इवेंट फॉर मेडिवल इस्लामिक सेंटर।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशक 6472903773 6472903773।
मोशेक एंड शिराज हुसैन इन एसोसिएशन विद द लीगल कनेक्शन एंड वतन कबाब प्राउडली प्रेजेंट Sajjad Ali performing on October 26th at the Meeting House, Oakville.
Hey, Cinderella, Cinderella.
Tickets available on Eventbrite, powered by Big Bickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshek Shiraz Hussain.
Radio Sazo Awaaz. Music, news and information. Messages and chit-chat.
ओके जी, वेलकम बैक। और जैसे हमने आपको बताया था कि हम आपको आज स्पेशल रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि खान साहब की लाइफ के ऊपर लोगों को बड़े खतरे लग रहे हैं और उसके ऊपर जो है पहला भी जो बुला लिया गया था वापस PTI का जो रैली था वो, और अब ये जो दूसरी कल होने वाली है, हालांकि गवर्नमेंट बात कर रही है PTI से कि ना करें क्योंकि SCU की मीटिंग कल से शुरू हो रही है, लेकिन देखें अब अभी तक तो PTI के ऑफिशियल्स कह रहे हैं करें, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको खान साहब की लाइफ का बहुत खतरा है क्योंकि हमसे मुलाकातें नहीं की जा रही हैं, तो इसके ऊपर ये स्पेशल रिपोर्ट है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मेडोवेल इस्लामिक सेंटर। इनका होने वाला है हमारे साथ टेलीथॉन और ये फ्राइडे को अक्टूबर 18 को 3:30 PM ऑनवर्ड्स होएगा। तो आप स्टूडियो में प्लीज कॉल करें, अपने जो भी ज़कात और सदकात हैं उनमें से आप पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ हिस्सा रह गया मस्जिद का बनने वाला, तो उसके लिए आप हमें स्टूडियो में कॉल करेंगे एट 416-620-1778। इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, यहां पे बड़े जबरदस्त किस्म के जो हैं खाने होते हैं और बड़ी एम्बियंस है, जबरदस्त बड़े जबरदस्त जो इनके हॉल हैं और जनाब जबरदस्त किस्म के गोल्फ कोर्सेज भी हैं, तो आप खाने में एंजॉय का मजा भी लें और आप गोल्फ भी खेलें। इनका नंबर है 9054588888 अगर आप इनको ज्यादा कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अच्छा जी, स्पेशल रिपोर्ट हमारी है जी कि ये जो पीएमएलएन है इनको एक प्रपोजल भेजा है इन्होंने पीटीआई ने कि अगर आप ये हमारी बातें मानेंगे तो फिर हम अपना कल का जो अक्टूबर 15 का जो हम रैली करने वाले हैं वो हम नहीं करेंगे इमरान खान के लिए। और उन्होंने कहा है जी कि जो रूलिंग कोलिशन है इंक्लूडिंग पीपीपी, इन्होंने इनको कहा था कि भाई आप री इवेल्युएट करें क्योंकि एससीओ का मीटिंग समिट जो है वो शुरू होने वाला है। इसके ऊपर एक टीवी शो जो में बात करते हुए पीटीआई के स्पोक्स पर्सन शेख वकास इकराम ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अगर इतनी ज्यादा वर्ड है एससीओ की मीटिंग के लिए तो वो हमें अलाउ करें इमरान खान से मिलने और उसकी बहनों और डॉक्टर्स को भी उससे मिलने दें। अगर उसकी बहनें और डॉक्टर्स बोल देती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं तो फिर हम ये प्रोटेस्ट जो है ये इसको कॉल ऑफ करेंगे, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा ना किया तो फिर कल का जो है ये बिल्कुल ऐसा ही जलसा रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप बहुत ज्यादा वरिड है कि इमरान खान साहब की हेल्थ कैसी है क्योंकि अथॉरिटीज बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन उनसे साथ पूछा गया कि आपकी अपनी खुद की पार्टी के अंदर ही ये रिपोर्ट्स हैं कि आपकी पार्टी लीडरशिप के अंदर डिफरेंसेस हैं टू होल्ड अक्टूबर 15 रैली। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान और केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और दूसरे जो हैं वो अपोज कर रहे हैं कि ये मौका नहीं है, लेकिन हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा और दूसरे जो हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं कि नहीं, ये रैली बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ हमें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही हैं और हमको बिल्कुल पता नहीं है कि वो उनकी तबीयत जो है और सेहत कैसी है। इसके ऊपर हम आपको एक छोटा सा जो है वो हम क्लिप सुनाते हैं जो हमारी बात हुई है मोहम्मद आतिफ हलीम साहब से वहां पे केपी के अंदर वो ट्रेडर्स जो यूनियन है उसके हेड हैं, उनकी बात सुने वो क्या कहना चाहते हैं सारे के सारे मामले पे कि इमरान खान साहब के साथ उनके क्या किया जा रहा है, लीडरशिप जो है उसके अंदर इस वक्त क्या सेंटिमेंट है, वो आप बात सुने और फिर हम वापस आते हैं।
35-40 दिन हो गए हैं कि हमारे कायद जो हैं वो जेल में हैं और गुज़श्ता 8 दिन हो गए हैं कि आपने उन्हें हमसे नजरबंद कर दिया है, हमें आइसोलेट कर दिया है, जबकि उनका उनके साथ उनके वकला उनकी फैमिली को भी नहीं मिलाना जा रहा। दूसरा ये कि 70 और 80 साल की खवातीन को आप लोग जेल भेज रहे हैं, इमरान खान की बहनों को मैं तो सलाम पेश करता हूं, अपनी मां शोकत खानम को जिन्होंने ऐसे बेहतरीन बच्चे पैदा किए जो कि कौम की खातिर इस वक्त जेल में है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कुछ हमारे कमजोर पार्टी के लीडर जिन्होंने लिबादा उड़ा वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हम फला पीडीएम को ये नहीं छोड़ेंगे और फला फला को नहीं छोड़ेंगे। भाईजान मैं आपको बता दूं कि पटवारियों के साथ डीलिंग और थी और इमरान खान के टाइगर्स के साथ डीलिंग और है। जो भी अगर खुदा ना करे मैं तो ये सोचता हूं कि आपकी जुबान जल क्यों नहीं गई कि जब आपने कहा कि इमरान खान को कुछ हो गया तो, और अगर इमरान खान को कुछ हो भी गया तो हम अपनी पार्टी में मौजूद कमजफ और मीर जाफर उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इमरान खान के जो मुखलिस वर्कर्स हैं उनसे मुखातिब हूं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ खड़े हों, हमें खुद इमरान खान की रिहाई की कैंपेन को अपने हाथ में लेना होगा, नहीं तो ये लोग इनको मैं बुजदिल कहूं या कॉम्प्रोमाइज कहूं या कुछ भी कहूं मुझे ये समझ नहीं आ रही, मगर चूंकि ये लोग इमरान खान को नहीं निकलवा रहे और हमें निकलना पड़ेगा। इमरान खान के मुखलिस वर्कर्स से मैं मुखातिब हूं, आप लोगों को निकलना पड़ेगा और इमरान खान की रिहाई कैंपेन अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जानसारा ने इमरान खान जो है अगले हफ्ते पीडीएम की तर्ज पर ग्रैंड जिरगा पेशावर में बुला रही है और अगर इन्होंने इमरान खान के साथ एक दो दिन में मुलाकात ना करवाई इमरान खान की फैमिली की तो हम यकीनन 16 तारीख तक अडियाला जेल के आगे धरने की कॉल भी 15 तारीख को जरूर देंगे क्योंकि इमरान खान की जिंदगी हमारे मुल्क की बका के लिए जरूरी है और एक इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की बका की जमानत भी है। तोपों का तमाम तर रुख जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ कर दिया गया तो मैं हजरत अली के गोल को जो है उसको मैं रेफर करूंगा। हजरत अली करमल्ला वजू ने कहा था कि जब देख लो कि दुश्मनों के और सब दुनिया के तीर एक ही तरफ जा रहे हैं तो यकीनन वो बंदा हक पर है। अगर अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज होता या उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स होती तो फिर इन सब के तीर बाकी हमारी क्यादत की तरफ भी होते, बाकी क्यादत को ना ये पकड़ रहे हैं ना जेल डाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं तो मैं उन पर कुछ शक नहीं कर रहा, मगर अली अमीन की इस वक्त क्रेडिबिलिटी की मेरी गारंटी मुझे लग रही है, जमानत लग रही है, दलील लग रही है हजरत अली वाली कि वो हक पर है। रही बात दूसरी, जो अली अमीन ने कल पेशावर में पीडीएम के ग्रैंड जिरगा में जो किरदार अदा किया है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की ओर से बहुत बड़ा काम लिया है। अली अमीन गंडापुर खुद भी समझदार आदमी है मगर ये अल्लाह की मदद से हुआ है। एक बहुत बड़ी खून रेजी जिसका प्रोग्राम बन चुका था, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी, 300 से 400 लोगों की शहादतें जो हैं उसका प्रोग्राम بن چکا تھا ان کے خیال سے، مگر اللہ رب العزت نے علی امین سے بہت بڑا کام لیا، اس نے فیصل امین کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھایا، اس نے ہمارے جو ہے وزیر داخلہ کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھایا، اپنی ذاتی رجشوں کو اس نے سائڈ پر رکھا، اس پر وہ سلام کا مستحق ضرور ہے۔ مگر میں باقی پارٹی قیادت کو بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، اگر میرے عمران خان کو کچھ ہوا، اور جو بھی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، تو میں وہ ہم فلاں پی ڈی ایم کو پکڑیں گے، نہیں، ہم پی ڈی ایم وغیرہ کو بعد میں پکڑیں گے، سری لنکا بنانے کے لیے ہم اپنی پارٹی میں موجود تمام میر جعفروں کو میں پہلے سے تنبیہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے پارٹی ورکر دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو 5 تاریخ کو واپس بھاگ کر آئے ہیں دھرنا چھوڑ کر، جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پیچھے سے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، یہ ان کو تنبیہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے عمران کو کچھ ہوا تو شروع یہ لوگ سری لنکا ماڈل اپنے پارٹی کے لیڈران سے کریں گے۔ اگر بشرا بی بی پردہ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ایسی حرکتیں نہ کریں، نہ ان کی چادر چار دیواری کا خیال آپ باہر آپ نہیں کر رہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پرانا ایک جنرل جو ہے جنرل مشرف کس موت میں مرے ہیں، دوسرے ہمارے ایک سینئر افسر جو ہے ابھی وہ بیماری میں مبتلا ہیں، تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اذا بتشتم بتشتم جباریم۔ میری درخواست یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا سرمایہ ہے، اس کی اس کریڈیبلٹی کو، اس کی اس جو لوگوں کے اوپر سر توڑ جادو جو چل رہا ہے اس کا، اس سے فائدہ اٹھائیں اور عمران خان کے لیے سب نکلیں، ہمیں عمران خان کو آزاد کروانا ہے اور یہ صرف مخلص ورکر ہی کرا سکتے ہیں۔ اپنے علاقے کے ایم پی اے ایم این اے پارٹی آفس بیئر پر پوری نظر رکھیں، انہیں پوری سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں اگر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا اور فراڈ کر رہا ہے تو شروع مجھ سے کیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انشاءاللہ ہم عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر دم لیں گے۔ والسلام۔
اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو، اور انہوں نے اس سے پہلے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ خان صاحب سے جو ہے ہمیں میٹنگ کرنے دو، اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی جو بیرسٹر گوہر اور حامد رضا صاحب ہیں ان کو کیوں نہیں آپ اجازت دے رہے ہو ملنے کی، ان کو آپ کو اجازت ملنے کی دینی چاہیے کیونکہ ان کی آخری ملاقات خان صاحب کے ساتھ اکتوبر 3 کو ہی تھی۔ اس ساری چیز کے اوپر بات کرتے ہوئے پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب جو ہیں جو جیل کی ہسٹری کے سب سے پریویلیج جو ہیں پرزنر ہیں، ان کے ساتھ ریگولرز ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن میں لوگوں کے ساتھ ریسٹرکشنز نہیں ہیں، پی ٹی آئی صرف ایس سی او کو ایک ایکسکیوز بنا رہی ہے، یہ ایک اتنا میجر انٹرنیشنل ایونٹ ہے، 200 ڈیلیگیٹس پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے، یہ ایک پاکستان کی اکانومی کی اور اس کے فیوچر کی بات ہے، اور یہ خان جو ہیں یہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بلا وجہ اسٹیٹ کو بلیک میل کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اسد کیسر صاحب ہیں انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا تھا کہ ہماری ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو بھی بتایا کہ خان صاحب کی حالت جو ہے بے انتہا خراب ہو رہی ہے اور ان کو میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ دینی چاہیے۔ اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ بھئی ان کو ایک پرسنل فزیشن جو ہے اس کو وزٹ کرنے دیا جائے اور یہ جو ہے ان کی صحت کے بارے میں تاکہ ان کو بتائیں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو یہ کہا کہ بھئی آپ اپنا پوسٹ پون کر دیں گے جو 15 اکتوبر کا جو آپ کا پروٹیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی گٹھ جوڑ کر رہی ہے اور احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے اب ایم کیو ایم پی کو کہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کھڑے رہو، ہم آپ کا جو پروپوزڈ لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل ہے اس کو ہم جو ہے جلدی لے کر آئیں گے۔ اس کے اوپر اگین بات کرتے ہوئے جو جنون کے لیڈ سنگر ہیں سلمان احمد، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے نہ صرف ہم سے بات کی بلکہ انہوں نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا کیونکہ دس ہیز بیکم ویری ویری سیریس ناؤ، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اتنے دنوں سے کیوں عمران خان کے ساتھ، اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، اس کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے امریکنز جو ہیں خاص طور پہ انہوں نے اپنے جو کانگریس کے ممبرز ہیں جو یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں پہ ایم پی ہوتے ہیں لوکل، ان سے ہم کانسٹیٹیوئنٹس بات کرتے ہیں، وہاں پہ کانگریس مین ہوتے ہیں یا ویمن ہوتی ہیں، ان سے لوگوں نے جا کے امریکہ میں بات کی ہے اور انہوں نے جو کانگریس ممبرز ہیں انہوں نے پھر جناب بات کی ہے سیکرٹری آف سٹیٹ اینتھنی بلنکن صاحب سے۔ یہ لیٹر آپ ہمارا دیکھ سکیں گے، یہ لیٹر دیکھیں جو کانگریس کے لوگوں نے جیسے کہ اسوزی صاحب ہیں اور جو برگمن صاحب ہیں انہوں نے سیکرٹری آف سٹیٹ اینتھنی بلنکن کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹس نے ہمیں کہا ہے کہ عمران خان کے لیے اور اس کی صحت کے لیے، اس کی کرنٹ سچویشن کے لیے لوگ جو ہیں وہ بے انتہا پریشان ہیں اور آپ جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر زور ڈالیں کہ جو عمران خان سے ملاقاتیں کرنے دی جائیں اور جو کوئی بھی جو اس کے خلاف جو ہے وہ آپ نے ایکشنز لیے ہوئے ہیں ان کو ری وزٹ کریں. اس سلسلے میں سلمان نے ہم کو ایک اپنا جو ہے آڈیو بھی بھیجا ہے اور وہ وہاں پہ جو اس نے سارے جو کاکس کے ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے اور باقی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے بات کر کے ایک نچوڑ نکال کے اس نے ان سے کیا سمجھ آئی ہے اس کو اس نے ہمیں کلپ بھیجا وہ آپ سنیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں.
السلام علیکم, میں سلمان احمد ہوں اور ابھی میں ایک وائڈ اسپیکٹرم آف پبلک اوپینین سن کے میں اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عمران خان پہ بلیک آؤٹ کیا ہے گینگ آف تھری نے وہ انایکسیپٹیبل ہے پاکستانیوں کے لیے, یہ انایکسیپٹیبل ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو. تو میں جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور ہر ادارے کی لیڈرشپ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر پروف آف لائف پروف آف سیکیورٹی آف عمران خان مہیا کیے جائے, اور جو ہماری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان ساروں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پروف آف سیکیورٹی پروف آف لائف دیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کو کس قانون کے تحت بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور ان کی کیا کیسی صحت ہے کہ ان کی کیسی کنڈیشنز ہیں اس وقت. ہمیں یہ سب چاہیے, نہیں تو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے بنگلہ دیش کو, آپ بھول جائیں گے سری لنکا کو. جو ہم گینگ آف تھری کے ساتھ کریں گے نا, خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کوئی تکلیف پہنچی یا کوئی نقصان پہنچا تو بھولے نا, آپ کے پاکستانی چھوڑیں گے نہیں.
جی تو یہ آپ نے سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ کنسرن ہے پی ٹی آئی کا اس وقت, اور جو ابھی ہمارے پاس بریکنگ نیوز جو ہے وہ یہی آئی ہے کہ گورنمنٹ اپیرنٹلی مان گئی ہے پی ٹی آئی نے جو یہ تھریٹ دیا تھا کہ جیسے کہ سلمان نے بھی کہا کہ ود ان 24 آورز آپ ہماری ملاقات اس سے کروائیں, یا کہ جیسے شروع میں انہوں نے کہا تھا جیسے آتف صاحب نے بھی کہ اگر کچھ آپ نے عمران خان صاحب کو کیا تو پھر آپ یاد رکھیں گے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو لگ رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے, اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پریشر آیا ہو, تو ابھی گورنمنٹ مان گئی ہے کہ وہ بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرنے دے گی, اور کل یعنی کہ جب ان کا جو آنے والا تھا ریلی اس کو انہوں نے کہا جی آپ پوسٹ پون کریں اور ہم عمران خان صاحب کو لے کے جائیں گے, اور اپیرنٹلی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شوکت خانم کے اندر ہی ان کے جو اپنے فزیشنز ہیں وہ ان کا جو ہے وہ کر سکیں گے میڈیکل چیک اپ. تو یہ جناب ہماری آج کی رپورٹ تھی اور لوگوں کا جو کنسرن ہے, تو اب ذرا میرے خیال میں تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے آیا ہوگا کیونکہ اب اجازت مل گئی ہے, ایک تو جلسہ بھی نہیں کل یا ریلی بھی نہیں کل کر رہے ہیں تو ایس سی او کی میٹنگ ذرا شانتی سے چلے گی جو کہ ملک کے لیے اچھا ہے, اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پتہ چل جائے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے جب وہ پہنچیں گے شوکت خانم کے اندر, اگر گورنمنٹ پنجاب کی بھی نے اجازت دے دی کہ وہ ادھر جائیں اور اپنا کریں. سو دس از اوور اسپیشل رپورٹ ٹوڈے.
بالکل جناب, یہ تھی ہماری آج کی اسپیشل رپورٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایگزیکٹ رائٹ ڈیسیجن,
بالکل رائٹ ڈیسیجن,
کیونکہ آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں دنیا بھر میں احتجاج کرتی ہیں,
بالکل,
اور ان کو ہینڈل کرنا.
اس چیز میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی تعریف کرنا بنتا ہے,
بالکل کرتا ہے. فیصلہ بھی آپ نے سنایا کہ بھائی انہوں نے ایگری کر لیا,
بالکل,
وچ از گڈ,
یہ تعریف,
اور ظاہر ہے
کیونکہ آپ کے ملک کے امیج کا مسئلہ ہے نا. کل 15 تاریخ سے ہی تو 200 بندہ آ رہا ہے پاکستان میں, 200 ڈیلیگیٹ آ رہا ہے, تو ایس سی او کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے, تو ملک کے امیج کی بات ہے, تو بالکل رائٹ ڈیسیجن, اپریشیٹ پاکستان گورنمنٹ.
بہت شکریہ سر جی آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کا, تمام سامعین کا اور ناظرین کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ. جناب اب دعا کا سیگمنٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے تو اب ہم بھی آپ سے کہیں, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا آج کا جو لانگ ویکینڈ تھینکس گیونگ کا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزر رہا ہوگا, ہر چیز کا جو ہے وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کیے جو آج آپ کے پاس ہے, جو اس کی عطا ہے آپ کے لیے, تو اس ہر چیز کا شکریہ ادا روز کیا کریں. چلیں جناب اب اجازت دیجیے, پوری مینجمنٹ کی طرف سے آرفا مظفر صاحبہ کی طرف سے, ماجد جمال صاحب کی طرف سے, ہمارے انجینئر ذیشان احمد کی طرف سے, اور میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد کی طرف سے اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.
مانگتا ہوں آمین. WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
पिघलती ये कहां यूं ही साथ साथ चलते
ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो
ओ तू बदन है मैं हूं छाया तू ना हो तो मैं कहां हूं मुझे प्यार करने वाले तू जहां किसी राह भी निकलते हो हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते ये कहा आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते हालात इधर भी है उधर भी तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी ये कहा आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते
तेरे दिल में थी मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है मसीहा मसीहा के मारों का है हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं अब दवा दे हमें या तू से दे जहर तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं एक एहसान कर एहसान कर अपने मेहमान पर अपने मेहमान पर एक एहसान कर दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए
बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया हो रंग रसिया रंग रसिया हो बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे थारी में जो ना परोसा
सोने की थारी में जो ना परोसा
और सोने की थारी में हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा पर खाए गोरी का यार बलम
तरसे रंग बरसे
ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
अरे लौंगा इलाची का भाई।
लौंगा इलाची का?
हाँ, अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया।
लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया।
लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। पर जब गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे
भोली है
और रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे
रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे
रंग बरसे भीगे जुनर वा
रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे
बेला चमेली का सेज बिछाया और बेला चमेली का सेज बिछाया बेला चमेली का सेज बिछाया
बेला चमेली का सेज बिछाया
और बेला चमेली का बेला चमेली का सेज बिछाया सोए गोरी का सोए गोरी का याद बलम तरसे
रंग बरसे भोली है
और रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे
हो रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे
रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे
रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे हो रंग बरसे
अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हाय
Thank you.